यज्ञ देवता प्रसन्न हुए हैं, आपको शीघ्र ही शीघ्र पुत्र प्राप्ति हो सकती है। अभी राजा को बड़ी आस बंद गई, ब्राह्मणों के प्रति उसका विश्वास था। उसके कुछ ही दिनों के बाद राजा प्रजा के सुख के लिए भ्रमण करने के लिए निकला। राजा का एक कार्य होता है ना कि प्रजाजन सुखी रहे, तो उसके लिए उनके बीच में जाए, भ्रमण करे, उनका कोई दुख है तो दुख दूर करे, उनकी बातों को सुने, आत्मीयता का व्यवहार रखे उनके साथ। सिर्फ राजा अपने महल में ही ना बैठा रहे हमेशा के लिए, और प्रजाजन क्या दुख अनुभव कर रहे समझे ही नहीं कभी, तो उत्तम राजा ऐसा नहीं होता। ये भ्रमण करने के लिए निकला तो उतने में क्या हुआ, भ्रमण करते करते जंगल के मार्ग में गया, और वहां पर उसको सामने क्या दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे पक्षी एक ही जगह पर खड़े हैं, स्थिर है ऐसे, और नीचे छांव की हुई है, और बहुत सारे हिरणों ने घेरा बना के रखा है, और बालक की रोने की आवाज आ रही है। अब ये सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। तो शास्त्रोक्त विधि में भी एक विधि आती है ऐसी कि कोई ऐसा विशेष प्रकार का पक्षी होता है, जिस पक्षी की छांव अगर व्यक्ति के ऊपर गिरे, मतलब पक्षी खुद छांव करता है उसके ऊपर, तो वह चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। और वह सारे पक्षी छांव करके बैठे थे इसको। हम चाहते थे ना पुत्र प्राप्ति करना, भगवान ने पुत्र दे दिया हमको, इतना सुंदर बालक। राजा ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष में संपूर्ण नगर में इतना आनंद उत्सव मनाया, जैसा पुत्र जन्म उत्सव होता है ना, ऐसा आनंद उत्सव मनाया कि राजा के वहां पुत्र प्राप्ति हुई है। हर एक व्यक्ति को उनकी इच्छा के अनुरूप अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ दिए गए, जो जैसी इच्छा करे वो ले जाओ। राजा बड़ा प्रसन्न है, लंबी उम्र के बाद पुत्र प्राप्ति हुई है। अब रानी और राजा पुत्र प्रेम में इतने आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि उनका हृदय में संतोष भी हो रहा है, और ऐसा अतृप्त आनंद भी उत्पन्न हो रहा है कि तृप्ति नहीं मिल रही उनको, पुत्र का मुख देख देख के खुश होते रहते हैं। कहाँ बालक इधर उधर भटकता था, और आज राजा के वहां पर पहुंच गया। अभी छोटे राज्य में पहुंचा है, मुख में अभी भी शालिग्राम जी तो है, वो भक्ति नहीं छोड़ी अभी भी, राजा के वहां पर भी आ गए। यही उनकी विशेषता थी। राजा ने क्या किया कि बालक जब 7 वर्ष का हुआ तो उनको पढ़ लेने के लिए भेजा अपने राज्य के गुरुकुल में। तो वहां गुरु ने खूब पढ़ाने का प्रयास किया, उसको खूब पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आए। और ये घूम फिर के भक्ति की बात पे ही आ जाए वापिस। तब गुरु ने आके कहा कि महाराज, ये बालक आप जिस जो लाए हैं ना, पता नहीं इसके खाते में, इसको पढ़ाते लेकिन इसको तो कुछ समझता ही नहीं, ये तो बहकी बहकी बातें करता है। बहकी बहकी क्या बातें करता था, वो बातें सिर्फ भगवान की करता था और दूसरे कोई बात नहीं करता था। अब ये उसको बहकी बहकी लगती थी, तो राजा समझ गया। राजा ने कहा, एक काम करो, आपने अपना प्रयास किया, इसको जो समझ में आना था ना वहाँ गया है, आप अपना जो उचित धनराशि ना उसको ग्रहण कीजिए और विदा लीजिए। उसको वहीं से विदा कर दिया। राजा ने देखा कि इसको तो भगवत चरणों में इतना अनुराग है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो जन्मों जन्मों में भी नहीं होता। तो 7 वर्ष की अवस्था में राजा ने उसका राज्याभिषेक कर दिया कि भविष्य का राजा यही रहेगा अभी, और चंद्रहास जी भावी राजा घोषित कर दिए गए। समय के प्रभाव में उम्र बढ़ती गई, और देव संयोग से वो मूल राजा थे, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। अब चंद्रहास जी के हाथ में सारा का सारा राज्य का भार आ गया। अब सारा राज्य का जब भार उनके हाथ में आ गया तो उनकी तो भावना कैसी थी, जैसे अम्बरीश महाराज की थी वैसी, बस पूरे राज्य में हरि भजन होना चाहिए, हरि भक्ति हो तो राज्य संपन्न है, इसलिए राज्य को हरि भक्ति में लगाने के लायक के लिए प्रयास करते थे। कभी कभी तो माँ बाप डर जाते, बच्चा भक्ति करेगा तो कहते फिर जीवन में और क्या करेगा, जीवन तो बर्बाद हो जाएगा उसका, ना ठीक से पढ़ेगा लिखेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई शादी नहीं करेगा तो जीवन बर्बाद हो गया समझो। मतलब जीवन इन्हीं तीन चार कारणों के ऊपर टिका हुआ है, ये तीन चार चीज़ें हो जाए मतलब जीवन सफल। ये तीन चार चीज़ें तो जगत में सभी की हुई है, कितने लोगों के जीवन सफल हुए, ये प्रश्न है कि नहीं बहुत बड़ा। जिसको हम जीवन सफल मानते हैं, अच्छी पढ़ाई हो गई, अच्छा स्टेटस वाला नौकरी मिल गया, मनपसंद की दुल्हन लाए और संतानें हो गई, फिर वृद्ध अवस्था हो गई, कहते कैसा जीवन रहा, कहते पूरा सफल जीवन रहा। और मृत्यु समय में व्यक्ति खुद गुर्रा रहा है बेचारा, कष्ट प्राप्त कर रहा है, मरने की राह देकर बैठा हुआ है, और नई मृत्यु आ रही तो घर वाले बोल बोल के मार रहे हैं उसको। अब बताओ ये जीवन कौन सा सफल हुआ, बिना भगवान के पूरा जीवन जिया, खाया पिया मजा किया, मृत्यु द्वार पर आके खड़ी हुई है, कष्ट भुगत रहा है, जाने की तैयारी है, वो भी करीब करीब पक्का है नरक की ओर जाएगा, अब फिर भी हम मानते जीवन सफल होगा, ये कौन सा सफल जीवन है। और भजन मार्ग में कोई लग जाए तो कहते ये उम्र है कोई भजन करने की, अभी तो पूरा जीवन बाकी पड़ा हुआ है, तो पूरा जीवन बाकी पड़ा तो पूरा जीवन भजन करेगा, उसमें हर्जा क्या है, अच्छी बात है ना, पूरा जीवन बाकी पड़ा है भजन करने को लंबा समय मिलेगा। कहते पूरा जीवन बाकी पड़ा है अभी छोड़ भजन, अभी पाप कर, फिर पापों को धोने की लाश में भजन कर लेना। अरे पूरा जीवन बाकी पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अभी भजन करने दो उसको, प्रॉब्लम क्या है। कहते लेकिन जीवन बर्बाद हो जाएगा, अरे भक्ति करके किसका जीवन बर्बाद होता है, भक्ति करके तो भगवान उसके अपने बन जाते हैं, भगवान जिसके अपने बन जाए उसको जीवन में क्या पढ़ना लिखना और क्या संसार के कार्य संभालने, उसका तो कोई रहता ही नहीं है सब, तो वो तो ऐसे ही भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है, उसको तो जगत से संबंध ही नहीं रखना, फिर यहाँ कौन सा जीवन संवारना। अनंत अनंत जन्मों से भ्रमण करे आ रहे हैं फिर भी ये ग्रंथि खुलती नहीं हम सब लोगों की, ये ग्रंथि अभी भी अटकी पड़ी हुई है, इतना नहीं किया ना जगत में जो बाकी करते हैं वैसा, तो समझो पूरा जीवन बेकार ही हमारा। लेकिन चंद्रराज जी की बुद्धि ऐसी नहीं थी, वो अपने प्रजाओं को क्या शिक्षा देते थे, आयुषम चपलम त्राग जल बूंद बूंद संधि सन्निभम चिंतयद्वम जना मूढ़म माधवम वर्ष सुस्थिरम। हे माया मोह में पड़े हुए मनुष्य, ये आयु जल के बूंद बूंद के समान क्षण भंगुर है और बूंद बूंद करके जैसे एक एक क्षण क्षण करके जा रही है, और शरीर में सुस्थिर रहने वाला एक ही भाग है वो है भगवान, और भगवान का अंश आत्मा, शरीर के अंदर सुस्थिर भाग एक ही है ना, बाकी तो सारा शरीर में कोई स्थिरता वाला भाग ही नहीं है। तो कहते भी शरीर को उस सुस्थिर भाग की तरफ क्यों नहीं लगाते, जिसने हमेशा स्थिर रहना है, जिसका तो नाश ही नहीं होना है। तो हे मेरे प्रजाजनों, हे मनुष्यों, अपने आप को शरीर के सुस्थिर भाग यानी कि माधव के प्रति लगाओ, तभी जीवन हमारा सफल हो जाएगा। एक राजा इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है प्रजाजनों को, और वो चाहता भी है कि मेरी प्रजा में सब यही काम करे, भले व्यापार वाणिज्य थोड़ा कमजोर रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये काम करो पहला, ये काम होगा तो भगवान वैसे ही इतने प्रसन्न होंगे कि व्यापार वाणिज्य का बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सुरक्षा के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक साधे सब सद जाए, एक ही साधो तो बाकी सब काम हो जाएंगे, अलग से किसी की जरूरत नहीं है फिर दूसरे अलग अलग प्रकार के चीजों को साधने की। वृक्ष के जल में मूल डाली, पानी डाला मूल में, एक ही साध दिया, जितने भी पत्ते लाखों करोड़ों एक ही बारी में सब पूरे, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। ये बुद्धि लेकिन सबके हृदय में नहीं जागती, समझ नहीं आता, फिर भी व्यक्ति को अटकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आए हैं जगत में व्यवहार में रहते थोड़ी चलेगा, बस यही जो मैंपन का भाव है कि नहीं चलेगा नहीं, ये मैंपन का भाव जगत में फिर व्यक्ति को बांधता है, नहीं भी कर जाएंगे तो चार लोग ताने ही मारेंगे ना, ताने मारेंगे तो वैसे भी कौन सा जगत में हमारा मान अपमान या अहम होता है, प्रभुपाद गीता में समझाते कि शरीर का तो ना मान अपमान मानना होता है ना अपमान होता है, क्यों? क्योंकि शरीर तो जड़ है और जड़ का क्या मान और क्या अपमान। जैसे टेबल को अगर सम्मान दो, आइए श्रीमान जी, बैठिए श्रीमान जी, लेंगे कुछ श्रीमान जी, तो टेबल को क्या फर्क पड़ेगा? और अगर ऐसे बोलो चल दफा हो जाए यहाँ से, तो भी टेबल को क्या फर्क पड़ेगा? वो तो जड़ है, जड़ ही रहेगा। कहते शरीर तो जड़ है और जड़ का क्या मान और क्या अपमान, और आत्मा चिन्मय होती है, इसलिए आत्मा को संसार का मान और संसार का अपमान, वो भी आत्मा को क्या लेना, वो भी आत्मा को तो लगता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद गीता में समझाते हैं कि जड़ शरीर से के मान अपमान से जीव को ऊपर उठना चाहिए। तो अगर जगत में कोई ऐसा कार्य हम नहीं भी कर पाए जो बाकी व्यवहार के तौर पर लोग करते हैं, तो भी जगत के चार लोग कुछ कह जाएंगे, उससे कहते हैं भक्त को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर अच्छी भक्ति मार्ग में आगे निकलना है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ रहा है तो समझो गति धीमी पड़ जाएगी आपको, उन्हीं के लोगों के लिए फिर जीना पड़ेगा, ये हो जाएगा अपने लिए जीना छोड़कर। कई बार जगत में लोग अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते, दूसरों के लिए मतलब सेवा नहीं करते। अरे व्यवहार में इतना तो करना पड़ता है, नहीं तो हमारे वहां कोई नहीं आएगा। मतलब ये दूसरे लोगों के लिए करना है कि हमारे वहां कोई नहीं आएगा, कि खुद की इच्छा के लिए करना है? तो कई बार तो व्यक्ति को मजबूरी में भी काम करने पड़ते हैं, नहीं तो दूसरा मेरे लिए नहीं करेगा। इसलिए आधा जीवन तो हम ऐसे ही अपनी रक्षा प्रतिष्ठा के लिए दूसरों के लिए जी लेते हैं। लेकिन चंद्रराज जी का ये भाव नहीं था। वो तो क्या करते थे, अपने राज्य में, राज्य उनका छोटा था ना, और कुंदनपुर राज्य के अंडर में आता था तो टैक्स भी देना पड़ता था। तो ये क्या करते थे, कुआ बावरी विष्णु मंदिर शिवालय साधु ब्राह्मणों आदि की सेवा में सारा का सारा व्यय कर देते थे, और सारा धन उन्हीं के पीछे व्यय करके ऐसा मानते थे कि भगवत सेवा के कार्य किए, प्रजा के लाभार्थ कुछ सेवा के कार्य किए तो वही सबसे उत्तम है। सब कुछ तो जगत में भगवान का है, तो टैक्स किसको देने का फिर? ऐसा सोच के वो टैक्स ही नहीं देते थे। तो कोई लोग सोचेगा हम भी गवर्नमेंट को कल से टैक्स नहीं देते फिर, लेकिन हम लोगों का तो इतना निष्ठा नहीं है ना भगवान के चरणों में। उनका तो निष्ठा उतना था भगवान के चरणों में, और वो तो अपने निजी वस्तुओं के लिए भी भोगने करते थे, वो भी भगवान का ही समझते थे। हम तो टैक्स ना देंगे तो करेंगे क्या, उस वस्तु का अपने लिए भोग करेंगे। लेकिन वो तो अपने लिए भोग करने के लिए नहीं बचाते थे, वो तो भगवत सेवा के लिए बचाते थे। दोनों में अंतर है। तो जो कुंदनपुर का जो राजा था ना, वो राजा ने सोचा कि ये लोग कई समय से हमको टैक्स नहीं दे रहे यहां पर, जबकि उनको टैक्स देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो मंत्री था ना दुष्ट बुद्धि, उसको भेजा, जाओ पता करो कि बहुत समय से इन्होंने कोई टैक्स नहीं भरा है, और टैक्स क्यों नहीं भरते जरा पता लो। दुष्ट बुद्धि आया, और आया तो देखा कि राज सिंहासन के ऊपर चंद्रहास जी बैठे हुए हैं, और तुरंत पहचान गया। छोटे से बालक के रूप में देखा था, फिर भी पहचान गया, उनका रूप इतना सुंदर था। कहता ये, इसको तो बचपन में मैंने मरवा दिया था, अभी भी जीवित है, धोखा हो गया मेरे साथ। कोई नहीं, जीवित है, राजा बन गया है ना, तो अभी बल से तो मारेंगे नहीं, लेकिन अभी छल से मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर, क्योंकि ये जीवित है। इसका मतलब मेरी बेटी के ऊपर लटकती तलवार है अभी भी शादी की, क्योंकि ब्राह्मणों ने बोला था कि तेरी बेटी के लिए यही योग्यवर है, ये जीवित है मतलब घूम फिर के यही आएगा आगे, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी का विवाह इस दासी पुत्र से करवाना, इसलिए कैसे भी करके इसको मारना, मारना तो है ही है मुझे, लेकिन अभी राजा बना है तो अभी बल का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए अभी छल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसने जाके बताया कि आप जानते हैं कि आपका जो राज्य है वो कुंतलपुर राज्य के अधीन आता है, और उसके कुछ नियम बने हुए, सालाना आपको इतनी मुद्राओं का टैक्स देना होता है जो आप कई समय से दे नहीं रहे, इसका परिणाम भी जानते हैं आप क्या होता है, कि जो मूल राजा है वो आपके ऊपर आक्रमण भी कर सकता है, उसने जो आपको सुरक्षा दे रखी हो वापस भी ले सकता है, और आपका राज्य छोटा है, बड़े राज्य के साथ मैत्री करना लाभपूर्ण होता है, इसलिए आप मेरी मानिए तो उचित समय पर टैक्स भर दिया कीजिए, तो हम के हमारे बीच में मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेंगे और उसके कारण आपका राज्य भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो छोटे राज्यों को दूसरे बड़े राज्य निगल जाते हैं, लेकिन हम बड़े हैं इसलिए आपको कोई निगल नहीं रहा है। इसलिए कभी कभी छोटे राज्य स्वाभाविक रूप में बड़े राज्य के अंडर में चले जाते थे कि ताकि बड़ा राज्य के भीतर में रहेंगे तो अपने आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये उनको एक तरीके से चेतावनी, ऐसा 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 डराने का, चुनौतीपूर्ण डराने का प्रयास कर रहा है और हल्का हल्का मलम भी लगा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक पत्र लिखकर देता हूं, आप उस पत्र को लेके कुंतलपुर जाइए और मेरा पुत्र जो मदन है ना उसको दे देना, आगे का काम सब ठीक हो जाएगा। अभी चंद्रहास जी ने आगंतुक मेहमान के रूप में आए, बड़े राज्य से आए हैं, उम्र में बड़े हैं, ये सोचकर उनका स्वागत सत्कार भी किया और फिर उन्होंने जैसा कहा वैसा कार्य भी किया। चलो ठीक है, अगर ऐसा कहते हैं तो पत्र देकर आते हैं। अब पत्र लेकर चले गए कुंतलपुर। कुंतलपुर पहुंचे तो वहां पर बगीचा था, वहां पर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ गए, थोड़ी देर यहाँ विश्राम करता हूँ फिर आगे प्रस्थान करेंगे। तो मुख में से शालिग्राम जी निकाले और सेवा पूजा करने लगे, फूल वगैरह थे तोड़ के सेवा पूजा कर रहे, बड़ा सुंदर सा स्वरूप था। तो वहां पर दुष्ट बुद्धि की पुत्री ऋषिया अपनी सहेलियों के साथ उसी बगीचे में घूमने के लिए आ गई, और जैसे इसने देखा ना, पहली नजर में उसकी इच्छा हो गई कि भाई पति हो तो यही हो, दूसरा कोई ना। अब मन अटक गया उसका, अब अपनी सहेलियों को भेजकर वो इधर उधर से तांग जांग करके उनको देख रही है और वो अपने भगवान की सेवा करने में व्यस्त है। तो नजदीक तक आ गई और बड़े घूर के उनको देख रही है, तो बालों में उन्होंने वो पत्र लगा के रखा हुआ था, तो उस तरीके से वो निकाला और उत्सुकतावश खोल के देखा कि पढ़े इसको क्या लिखा है। तो उसमें क्या लिखा था, वो दुष्ट बुद्धि ने अपने पुत्र को संबोधन करके लिखा था कि बिना कुछ सोचे विचारे इस चिट्ठी लाने वाले बालक को शीघ्र विष देकर मार दो, यानी कि विष दे दो, इसको विष दे दो, बिना कुछ सोचे विचारे चिट्ठी लाने वाले बालक को शीघ्र विष दे दो। इसने चिट्ठी पढ़ी, पहला भाव आया विष दे दो, और मदन को संबोधन करके चिट्ठी लिखी थी, कहते ये कैसा कार्य है, हम इनको इतना पसंद करते हैं, इनको मारने की बात हो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद भाव बदला, शायद लिखने में गलती हुई लगता है, विष दे दो नहीं होगा, ये पिताजी ने लिखा है ना उसमें थोड़ी गलती की है, उसने आंखों में काजल लगाया था तो काजल लिया थोड़ा सा और पीछे या कर दिया, या बिना कुछ सोचे विचारे चिट्ठी लेके आए बालक को विषिया दे दो, और चिट्ठी वापस उसके बालों में जैसी थी वैसी रख दी। कहते पिताजी से गलती हो गई लगता है, चिट्ठी वापस रख दी। ये अपना पूजा पाठ आदि सब कुछ करने के बाद महल में गए और वहां पर जाके उन्होंने मदन, वो भी स्वभाव का अच्छा व्यक्ति था, उसको जाके चिट्ठी पकड़ाई। जैसे उसने चिट्ठी पढ़ी ना वो तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, और बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत कार्य करना था, ये तो उनको गले लग गया, बहुत खुश हो गया, अपनी बहन को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और तुरंत ही इतनी स्पीड में अरेंजमेंट करके विवाह भी कर दिया। पिता तो अभी आते रहेंगे क्योंकि पिता की आज्ञा है, ज्यादा विचार नहीं करना इसमें, और विवाह भी करा दिया और इतना मुक्त हस्त से धन बांटा, खूब धन बांटा, बुला बुला के लोगों को धन बांटा। जो जो लोग वहां पर धन ले जाते थे ना वो कुबेर को भी धिक्कारते थे कि शायद कुबेर के घर गए होते तो इतना ना मिलता जितना यहां से लेके आए, इतना धन दिया। अब क्या हुआ, चंद्रहास जी ने सोचा कि चिट्ठी में यही लिखा होगा, इसलिए इन्होंने साथ मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। यहां विषया भी बड़ी प्रसन्न हो गई। आज विषया को लगा, बचपन से लेके कहते मैं हमेशा एक बात को लेकर दुखी थी कि मेरे पिताजी ने मेरा नाम कैसा रखा विषया, मेरी सहेलियों का नाम कितना सुंदर सुंदर है, हाँ किसी का नाम मालती है, किसी का नाम चंपक लता है, हेमलता, कनक प्रभा, ऐसे सुंदर सुंदर नाम है, और मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा विषया। आज कहते मुझे लगा कि मेरा नाम आज बराबर सार्थक हुआ है विषया। अब क्या हुआ, अब विवाह तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब दुष्ट बुद्धि आया जब वापिस, तो जो मिले उसको नगर में, जो मिले सब उसको बधाइयां दे, क्या आपके बेटी का विवाह होगा, बहुत बड़ी बधाई। वो कहते क्या दिमाग खराब हो गया, जो मिले रास्ते में प्रसन्नता के उसके पास आए और बधाइयां दे और बड़ी तारीफ करे, क्या आपने दक्षिणा दिलवाई, हो आनंद हो गया। करते करते राजमहल तक पहुंचा, मदन को पूछा क्या हो रहा है, मैंने तेरे को क्या करने के लिए कहा था, तूने क्या कर दिया। कहते पिताजी मैंने क्या किया, चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में वैसा ही लिखा है, बिना को सोचे विचारे चिट्ठी लेके आए हुए बालक को विषया दे दो। कहते पिताजी मैंने विषया आपने बहन दे दी। तब भी दुष्ट बुद्धि क्या सोचता है कि मैं बार बार इसको मारने का प्रयास करता हूं, लेकिन इसको पता नहीं है, और इसके बिना किसी प्रयास के भी ये अपने आप बच जाता है। बार बार प्रयास तो कर रहे हैं ना, और वो यत्न भी नहीं कर रहे बचने का, उनके तो अनजाने में सब कुछ जा रहा है, लेकिन फिर भी भगवान सारी व्यवस्था सेट कर रहे हैं उनके लिए। ये होती है भगवत भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा। कोई अगर ये कहे कि ऐसी हमारे ऊपर क्यों नहीं होती है, तो ये हमने मांगना नहीं चाहिए, ऐसा अधिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसके योग्य नहीं है ना, हमने भगवान के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए हम ऐसी आशा भी नहीं करते, ना करने चाहिए कि भगवान हमारे लिए क्यों नहीं करते ऐसा। भक्त लोग तो आशा नहीं करते, भगवान तो स्वयं ये कार्य करते हैं। फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ, कहते कोई नहीं मैरिज हो गया तो कोई नहीं, मेरी बेटी विधवा जी है कि ना, वो मुझे चलेगा, लेकिन दासी के पुत्र के साथ जिएगी वो मुझे नहीं चलेगा। अभी भी उसको समझ नहीं आ रहा कि दासी पुत्र नहीं है, लेकिन दासी के पुत्र के साथ जिएगी तो नहीं चलेगा। कहते विधि का विधान जहां सेट होना होता है हो जाता है, भगवान बराबर योजना बिठाते रहते हैं। गरुड़ जी के ऊपर बैठकर एक बार भगवान विष्णु जा रहे, कैलाश के ऊपर से गुजर रहे, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देख रहे कि एक राज्य में दो बारातें आई है अलग अलग दिशाओं से। गरुड़ जी ऊपर से देख रहे, कहते प्रभु यहां पर विवाह कन्या का हो रहा है और बारातें दो आई है, दो बारातें आने का क्या मतलब, एक दूल्हे के साथ दो दुल्हन तो हो सकती है, लेकिन एक दुल्हन के साथ दो दूल्हे तो नहीं होते, ये दो बारातें कैसे आई। तो भगवान कहते एक उसके पिताजी ने सोचा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसी से कराऊंगा, और माता जी का मन है कि मैं अपनी बेटी का इसी से कराऊंगी, तो दोनों बारातें आई है। गरुड़ जी कहते प्रभु फिर विवाह होगा किसके साथ। भगवान कहते भविष्य में बता देता हूं तेरे को, विवाह होगा जो माता ने चाहा ना उसी दूल्हे के साथ विवाह होगा। अब गरुड़ जी भगवान को वैकुंठ में उतार दिए, भगवान को जाना था वहां, भगवान को उतार दिए। गरुड़ जी कहते भगवान की लीलाएं कैसी होती ना, जरा देखते एक बार भगवान कैसी कैसी योजना बिठाते, एक बार जरा देखे तो सही। गरुड़ जी ने कुछ मस्ती करने के लिए क्या किया, माता जिसको चाहती थी ना वो जो दूल्हा था, उस दूल्हे को वहां से उठाया और कई कई हजारों मीलों दूर किसी दूर एकांत नदी के किनारे पर जाके रख दिया, और गरुड़ जी आके बैठ गए वहां पर। अभी यहां तो खूब पार्टी शार्टी हो रही है, सब दबा के खा पी रहे, फिर गरुड़ जी को मन में आया मैं उसको वहां छोड़ के तो आया, उसका तो कोई दोष नहीं था, लेकिन कुछ कम से कम खाना पीना तो देना चाहिए था उसको, यहाँ तो सब मजे मार रहे हैं और वहां बेचारा भूखा पैसा बैठा होगा। खैर अभी क्या हुआ, वो सब लोग दूल्हा ढूंढ रहे, दूल्हा ही नहीं मिल रहा है। लड़की की माँ को समाचार भेजा गया कि दूल्हा किसी कारणवश मिल दिख नहीं रहा है, तो लड़की की माँ ने तुरंत समझ लिया, कहते दूल्हा मिल रहा नहीं रहा है तो आपत्ति हो जाएगी, फिर तो दूसरा दूल्हा रेडी बैठा है, तो क्या किया उसने, बड़ी सी टोकरी मंगाई, उसमें बेटे को बोला बेटी इसी में बैठ जा, और ऊपर बहुत सारा खाने पीने का सामान धर दिया, किसी को समझ में ना आए, और समधी को बुलाया, कहते देखो ये मेरी बेटी, आज ले जाओ यहाँ से, अपना बेटा बाद में ढूंढ के शादी करा लेना, अब मिल नहीं रहा है तो बाद में ढूंढ लेना, लेकिन बेटी तो ले जाओ, नहीं तो दूसरा दूल्हा तैयार है। अब उन्होंने टोकरी ले जाए, उसके पहले गरुड़ जी के हृदय में इतनी दया आई थी, इतनी दया आई थी कि यहाँ लोगों ने इतना खाना पीना खाया, वो बेचारे व्यक्ति को कुछ खाना पीना तो देता था मैं कम से कम। गरुड़ जी पूरी टोकरी उठाकर ले गए वहां पर, ले कम से कम यहाँ एकांत में बैठा खा पी तो ले। अब वहां टोकरी उठा के नीचे रखी, वो खाना निकाल रहा है, भूख बड़ी लगी थी, निकाल रहा है तो अंदर से कन्या बाहर आई। गरुड़ जी देख के आश्चर्य कर गई, कन्या यहाँ कहाँ से बाहर आ गई, कन्या तो वहां थी। तो गरुड़ जी ने देखा कि विवाह वहां होने वाला था, मैं कई कोसों मिलो दूर यहां पर ले आया, दोनों यहां इकट्ठे हो गए वापिस। तो भगवान ने जो चाहा होता है वही होता है। अब यहां तो कोई ब्राह्मण भी नहीं है, अब गरुड़ जी क्या कहते, चलो ठीक है काम करो, अभी आप दोनों तैयार हो जाओ, बैठो यहां पर, मैं भी ब्राह्मण बन के विवाह कराता हूं। गरुड़ जी ने खुद विवाह करवाया वहां पर उनका, और विवाह कराने के बाद फिर वापिस भी पहुंचाया, क्योंकि वहां एकांत में कैसे छोड़ते, वापिस भी पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद भगवान के पास कहे, वाह प्रभु कुछ करते ही नहीं लेकिन आराम से बैठे बैठे मजा लेते हैं सब, मेरे को पहले वहां भगाया, फिर दुल्हन को भी वहां भेजा, और अच्छा भला मेरे को वहां पर पुरोहित भी बना दिया, शादी भी करवा दी मेरे से, और मेरे को वापिस, अभी मेरे को वहां छोड़ के तो नहीं आ सकता था, दोनों को वापिस भी रखवाया उन दोनों को, मतलब शादी कराने के लिए उठा के वहां ले गए बस मात्र। तो कहते इस तरीके से माँ का दूल्हा जो नियुक्त किया था उससे शादी होनी थी, वहां नहीं होनी थी, वहां होनी थी। तो ये कार्य गरुड़ जी के अलावा कुछ कोई नहीं कर सकता था, इसलिए भगवान ने पहले गरुड़ जी के मन में प्रेरणा डाली कि प्रश्न पूछ, दोनों में से कौन विवाह करेगा। तो गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा, तो भगवान कहते प्रश्न तूने पूछा है, एक काम कर, अभी मैं योजना करूंगा, बाकी का मेहनत तू ही करना फिर। तो भगवान ऐसी योजनाएं बिठाते हैं, हमको लगता है कि मैं कुछ सोच सोच के कर रहा हूं, लेकिन भगवान अनेक अनेक ऐसी योजना बिठाते हैं ना कि हमको कभी कभी विवश होकर अनेक अनेक मोड़ों पर मुड़ना ही पड़ता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता सब। हमने सारी योजना बिठा कर रखी होती है और अचानक थोड़ा दर्द होता है और परिवार के लोग सारा प्रोग्राम पोस्टपोन करके भागते हैं व्यक्ति को लेकर, सब छोड़ो पहले अभी इसको बचाओ। तो भगवान योजनाओं को बीच बीच में बदलते रहते हैं, सब कुछ तो उनकी इच्छा मात्र से घटित होता है, और विशेष करके भक्तों के जीवन में तो खास, क्योंकि भक्त तो अलग से प्रयास भी नहीं करना चाहते भगवान को छोड़कर कुछ करने का, वो जो प्रयास करते ना वो यही करते कि भाई प्रभु कैसे सुखी रहे, दूसरा उनका कोई अलग से प्रयास नहीं होता। अब दुष्ट बुद्धि ने क्या विचार किया कि अब दूल्हा तो बन गया है लेकिन फिर भी इसको छोड़ना तो नहीं है मैंने। कहते काम करो चंद्रहास जी, हमारे यहां पर ऐसा एक नियम है कि जो दूल्हा बनता है ना तो फिर यहां हमारे पास में देवी का जो मंदिर है वो वहां पर जाके देवी की पूजा करता है ताकि बाद में उनकी गृहस्थी अच्छी तरीके से चले, तो आप जरा देवी की पूजा कर आओ। कहते ठीक है जैसा आप चाहो। और यहां से चार लोग उसने फिर वापस नियुक्त कर दिए, डकैत प्रकृति के, छुपे वेश में, हथियार के साथ। और क्या किया, चंद्रहास जी जैसे देवी की पूजा करने आएंगे ना और जैसे ही प्रणाम करने झुके ना वहीं वध कर देना उनका। अब ये तो पूरे तैयार बैठे हैं। अभी क्या हुआ, ये गए देवी की पूजा करने के लिए, उतने में कुंतनपुर का जो राजा था, कुंतनपुर के राजा की चंपक मालिनी नाम की बेटी थी, एक ही कन्या थी, बेटा कोई नहीं था। उसने सोचा कि बेटी है ऐसा जमादार ढूंढ के लाता हूं ना, वही बाद में राजा बन जाए। तो राजा ने अपने पुरोहितों को इकट्ठा करके बोला कि मेरी बेटी की जन्म पत्री पढ़ के बताओ इसके लिए उत्तम वर कौन सा रहेगा। सब लोगों ने जन्म पत्री देखकर सब ने एक ही निर्णय बताया कि इसके लिए तो उत्तम राजा चंद्रहास रहेगा। पहले मंत्री के बेटे से विवाह हुआ, अब जिस राज्य में उनका जन्म हुआ था ना उसी राज्य का राजा कुंतनपुर का, उसकी एक ही कन्या है। राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी, अभी के अभी चंद्रहास जहां है वहां ले आओ और शादी करा के तुरंत ही उसको राजा बना दिया जाएगा। यह समाचार मदन को पहुंच गया क्योंकि वो भी तो मंत्री का बेटा था, उसको समाचार पहुंचा ना, वो तीव्र गति से गया और रस्ते में चंद्रहास को पकड़ा। कहते तुम अभी देवी की पूजा छोड़ो, माता को यहीं से प्रणाम कर दो, लेकिन अभी बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, राजा की बुद्धि है अभी आ गई है, अभी मन मान गया है, बाद में राजा की बुद्धि घूम गई तो क्या करेंगे। राजा है, मूडी होता है, मना है तो किया, मना है तो नहीं भी किया, उसको कौन पूछेगा बाद में। तो अभी बिना विलंब किए तुम भागो सीधा राजमहल में, और वो अपनी बेटी चंपक मालिनी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता है और बाद में तुमको राजा भी बनाना चाहता है, तो तुम भागो। कहते देवी की पूजा, वो कहते मैं जला जाऊंगा, माता को तुम्हारे तरफ से मैं प्रणाम कर दूंगा, तुम भागो। उसको वहां रवाना किया और मदन काया देवी की पूजा करने के लिए। वहां पर रात्रि हल्का हल्का थोड़ा अंधेरे जैसा समय था, पूजा करने के लिए गया वो मदन। उनको लगा चंद्रहास आए हैं, जैसे प्रणाम किया सर उड़ा दिया और खुश भी हो गए कि चंद्रहास तो गया। अभी यहां पर क्या हुआ, राजा के महल में गए चंद्रहास जी और राजकुमारी से विवाह करा दिया तुरंत ही, और उसी समय घोषणा भी कर दी यही अभी आगे के राजा। दुष्ट बुद्धि को समाचार मिला चंद्रहास को मैंने माता के मंदिर में पूजा करने भेजा था, यहां पहुंच गया राजा भी बन गया। उसके भाग्य में लिखा था कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मूल जो राज्य था उसके पिताजी का चक्रवर्ती सम्राट का मूल राज्य वापस आया उसके पास। पूरी योजना में उसने कहीं पर भी अलग से प्रयास नहीं किया, बीच रस्ते में से पकड़ पकड़ के ले जाते उसको, उसका भाग्य वहां ले जाता है अपने आप, और राजा तक भी बना दिए। पहले छोटे राज्य का राजा बनाए, फिर बड़े राज्य का राजा बनाए। तो कहते वहां कौन गया फिर, उस बधिकों ने तो आगे मुझे समाचार दिया कि हमने तो चंद्रहास को मार दिया, जब वहां जाकर देखा तो उसी का पुत्र मरा हुआ। बड़ा पछताया कि मैंने बार बार गलत काम करने का प्रयास किया ना, यही इसी का परिणाम है, मैं बार बार इसको मारने का प्रयास किया, आखिर में मेरा ही पुत्र मर गया। बहुत परेश दुखी हुआ, अपना ही सर पटक के वो भी वहां पर मर गया, पिता पुत्र दोनों ही मर गए। चंद्रहास जी का राज्य अभिषेक हो गया और अभी क्या हुआ, उनको याद आया कि देवी की पूजा करने जाना था, वो विधि तो आधे में रह गई, यहाँ के राज्य की परंपरा है ऐसी। तो दूसरे दिन देवी की पूजा करने के लिए जब वहाँ सवेरे पहुंचे ना, तो क्या देखते हैं कि वहाँ दुष्ट बुद्धि और मदन दोनों मरे पड़े हुए हैं। इतना दुखी होकर देवी के चरणों में प्रार्थना की उन्होंने, अब भगवान के महान भक्त थे तो देवी भी तो उनको मानती, देवी क्यों उनको धुतकार देती। देवी के चरणों में इतनी प्रार्थना की उन्होंने कि जैसे भी है ठीक है, लेकिन मेरे अपने है। तो कहते एक हरि का भक्त या स्वयं हरि किसी को अपना बना लेना तो उसका तो समझो सब मंगल ही मंगल होता है। मरे हुए थे, देवी को प्रार्थना की कि आप कुछ भी करो, अगर लगे तो मेरे को मार दो, मरना तो मुझे ही था, मेरे बदले में दोनों मर गए, मरना मुझे ही था, तो मेरे को मार दो, इनको जीवित करो। ये देखकर देवी ने उन दोनों को वापस जीवित भी किया। अब दुष्ट बुद्धि की बुद्धि है ना, अभी सुबुद्धि में परिणित हो गई। इतने धक्के खाने के बाद समझ में आई कि आखिर दूसरा जीवन भी इसी की कृपा से मिला है, और उसी के राज्य में मंत्री पद पर रहे। और चंद्रहास जी ने अब कुंतलपुर को पूरा भक्ति में बनाने का प्रयास किया, घर घर भक्ति स्थापित कर दी उन्होंने। अब क्या हुआ कि महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था तब उस समय रात सुई यज्ञ के समय में महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ का घोड़ा अलग अलग जगहों पर भ्रमण कर रहा था, जब तब यज्ञ का घोड़ा जब वहां पहुंचता है तब वो पढ़ते हैं महाराज युधिष्ठिर जी की अश्वमेध यज्ञ की अश्व के ऊपर लिखी चेतावनी, वो तुरंत समझ गए कि तो पांडवों के वहां से आया घोड़ा है और पांडवों के वहां तो स्वयं हमेशा भगवान विराजते हैं, भगवान उनके वहां तो उनके तो संबंधी लगते हैं, उनके वहां तो आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र मोरध्वज को बोला, मोरध्वज उन्हीं का पुत्र था, वो भी बड़े महान भक्त थे, अपने पुत्र मोरध्वज को बोला कि एक काम करो, अभी के अभी दूसरा बेटा भी था पद्माक्ष, दोनों को बोला अभी जाओ और वो जो यज्ञ का घोड़ा है ना उसको बांध के ले आओ यहां पर, ये अच्छी योजना है प्रभु दर्शन करने की। बांध के रख लिया। अब क्या हुआ कि जब सिपाहियों ने जाके अर्जुन को समाचार दिया कि यज्ञ का घोड़ा अब तक तो किसने बांधा नहीं था लेकिन आज किसी ने बांधा है, अर्जुन ऐसा घुर्राने लगा कि क्या उसको पता नहीं है कि हमारा अश्व बांधा है उसने, वो हमको जानता नहीं क्या? तो भगवान कहते तुम, मैं भी साथ में चलता हूं तुम्हारे, तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। अर्जुन और भगवान दोनों चल पड़े, कुंतलपुर पहुंचे, यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। अर्जुन पहले समझ नहीं पाए, अर्जुन तो सीधा चैलेंज समझकर खड़े हो गए लड़ने के लिए। भगवान कहते हैं भाई हर कार्य लड़ने से जरूरी है करना, बातचीत करके भी घोड़ा मिल जाए तो हर्जा क्या है, पहले बातचीत करो, प्रयास करो। उनको घोड़े से राज्य से कोई सरोकार नहीं था, भगवान मध्यस्थी बनकर आए तो भगवान को एक टक लगाकर देखते रहे, जैसे अपने प्राण उठा के भगवान में डाल दिए हो। अर्जुन कह रहा है इनके अंदर तो कोई प्रतिशोध की ऐसी भावना दिख ही नहीं रही है, ये तो बड़े मुस्कुरा रहे कृष्ण के प्रति और बड़े भावपूर्ण नेत्रों से देख रहे, आंखों में से आंसू बह रहे इनके। तो अर्जुन देख के आश्चर्य कर गया, ये कैसा प्रतिद्वंदी है जो हमारे साथ ऐसा सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर रहा है। भगवान ने उनको दर्शन दिए, उनका जब जी भरा तो भगवान ने अर्जुन को कहा ये महान भक्त है, ये तो हमको मिलने के लिए उन्होंने यज्ञ का घोड़ा बांधा, इनको बाकी राज्य से कोई लेना देना नहीं, ये तो पहले से वैरागी प्रकृति के है। तो भगवान ने स्वयं वहां जाकर उनको दर्शन दिया, उन्होंने भगवान को यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया और शेष जीवन भक्ति में ही व्यतीत किया उन्होंने। तो ऐसे चंद्रहास महाराज जी अपने जीवन काल में कई ऐसे प्रसंगों से गुजरे, कई सुखपूर्ण प्रसंग, कई दुखपूर्ण प्रसंग, लेकिन फिर भी हमेशा भगवान की सेवा करते रहते थे, भगवान के प्रति उनके भाव में कभी कमी नहीं आती थी, यही भक्त की महानता होती है। इसलिए ऐसे भक्तों के चरित्र सुनने से ही हमारे हृदय में थोड़ी प्रेरणा भी जागती है कि बड़े बड़ी विपत्तियों में भी ये लोग भजन कर ले जाते हैं, हमको तो छोटी छोटी विपत्तियों में करना है भजन, उसमें स्थिर रहना है, फिर हम क्यों विकल हो जाते उसमें। तो भक्तों के चरित्रों में से भजन करने की, स्थिर रहने की, अनेक प्रकार के दुखों से निपटने की प्रेरणाएं मिलती है और विषयों से कैसे दूर रहा जाए ये भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए भक्तों के चरित्र सीधे हृदय को प्रभावित करते हैं भक्ति की ओर। तो आप सभी का धन्यवाद। चंद्रहास जी महाराज की, शेष जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर राधा कृष्ण भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।